नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर विचार विमर्श के लिए संसद की 3 दिन की विशेष बैठक कल से शुरू होगी। वर्ष 2023 में पारित इस विधेयक को सरकार लागू करने के लिए सरकार 3 संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह विशेष बैठक संविधान में संशोधन करने के लिए बुलाई गई है ताकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू किया जा सके। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर सभी पार्टियों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि यह बेहद जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाएं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी यह आश्वासन दिया कि आरक्षण विधेयक संतुलित है और यह हर राज्य, समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को ध्यान रखता है।
ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। सब मिलकर के एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करेंगे।
भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी आर और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने दोनों सदनों के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने और अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन विधेयक को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उस पर आशंका है। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद श्री खड़गे ने दावा किया कि विधेयक राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में नागरकोइल में भव्य रोड शो किया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दावा किया कि संसद का विशेष सत्र केवल महिला अधिनियम के लिए नहीं बुलाया गया है। डीएमके नेता और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ओटापिडीराम में चुनाव प्रचार किए। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर भाजपा चाय बगान श्रमिकों के कल्याण का पूरा ध्यान रखेगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में कहा कि भाजपा नेतृत्व आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बंगाल में वोट हासिल करने के लिए धन का दुरुपयोग कर रहा है। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। अन्य कैबिनेट मंत्रियों की सूची की घोषणा बाद में की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह और सामान्य प्रशासन सहित 29 विभाग रहेंगे। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 4.22% बढ़कर 860 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इसमें वस्तु और सेवा क्षेत्र शामिल है। वहीं आयात में लगभग 6.5% की वृद्धि हुई और यह 979 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले वित्त वर्ष में कुल व्यापार घाटा बढ़कर 119 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 94 अरब डॉलर से अधिक था। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने देश भर में घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुगता शर्मा ने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव रजनीश ने बताया कि पिछले 2 महीने में 20 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि ईरान के अधिकारी शांति समझौते पर सहमत होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि वह सेना वापस बुला लेते हैं तो भी ईरान को देश के पुनर्निर्माण में 20 वर्ष लगेंगे। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहती है तो वह ओमान की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री व्यापार को भी अवरुद्ध करेगा। आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 147 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 6 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।